ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્થાન સંખ્યા 6, અધ્યાય સંખ્યા 15, શ્લોક સંખ્યા 26. તસ્માત્ સ્વસ્થેન મનસા વિમૃશ્ય ગતિમ આત્મનઃ દ્વૈતે અર્થ વિશ્વમ ત્યજ ઉપશમ આવિશ. તસ્માત્ સ્વસ્થેન મનસા વિમૃશ્ય ગતિમાત્મનઃ ધ્રુવર્થ વિશ્વમ ધ્રુવાર્થવિશ્વમ ત્યજ્યોપશમ નાશ. તસ્માત્ સ્વસ્થેન મનસા વિમૃશ્ય ગતિમાત્મનઃ દ્વૈતે ધ્રુવાર્થવિશ્વમ ત્યજ્યોપશમવશ. તસ્માત્ સ્વસ્થેન મનસા વિમૃશ્ય ગતિમાત્મનઃ દ્વૈતે ધ્રુવાર્થવિશ્વમ ત્યજ્યોપશમ આવિશ. તસ્માત્ અત સ્વસ્થેન સ્વસ્થ સતર્ક મનસા મનસે વિમૃશ્ય વિચાર કરકે ગતિ વાસ્તવિક સ્થિતિ આત્મનઃ અપની દ્વૈત દ્વૈતને ધ્રુવ સ્થાયી અર્થ વસ્તુ વિશ્વમ વિશ્વાસ ત્યજ છોડ દો ઉપશમમ શાંતિપૂર્ણ સ્થિતિ આવિશ ગ્રહણ કરો. સર્વાદ વર્તો શ્રી ગૌરવા દ્વારા ગૌરવાની ફિર વિષય દ્વારા એ અત હે ચિત્ર કેતુ આત્મા કી સ્થિતિ પર ઠીક સે વિચાર કરો અર્થાત યે સમજને કા પ્રયત્ન કરો કે તુમ કૌન હો શરીર મન કે આત્મા. યે વિચાર કરો કે તુમ કહાં સે આયે હો યે શરીર છોડકર કહાં જાઓગે ઔર તુમ ભૌતિક શોક કે વશ મેં ક્યો હો. ઇસ પ્રકાર તુમ અપની વાસ્તવિક સ્થિતિ જાનને કા યત્ન કરો તભી તુમ અનાવશ્યક આસક્તિ સે છુટકારા પા સકોગે. તબ તુમ ઇસ વિશ્વાસ કા પરિત્યાગ કર સકોગે કે યે ભૌતિક જગત યા અન્ય કોઈ વસ્તુ જિસકા શ્રી કૃષ્ણ કી સેવા સે સંબંધ નહીં હૈ શાશ્વત હૈ. ઇસ તરહ તુમે શાંતિ પ્રાપ્ત હો સકેગી. આગળ બઢતા હું ધ્યાન મેં રોકશે. વાસ્તવ મેં શ્રી કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન માનવ સમાજ કો ગંભીર બનાને કા યત્ન કર રહા હૈ. અનિયંત્રિત સભ્યતા કે કારણ સભ્ય મનુષ્ય ભૌતિકતા મેં ઉસી પ્રકાર જુટે હૈં જૈસે કુત્તે યા બિલ્લિયાં. वे सभी प्रकार के कुत्सित एवं पापपूर्ण कर्म करके उलझते जाते हैं. श्रीकृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण द्वारा निर्देशित होकर पहले ये समझना होता है कि वह मनुष्य शरीर नहीं बन वे मनुष्य शरीर नहीं वरना शरीर का स्वामी. जब ये सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर होने लगता है. क्योंकि मनुष्यों को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे प्रवतों की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगता है। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को जिनके मान बैठता है, उसे चाहिए वे भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे, तभी वह गंभीर तथा शांत बन सकता है। हरे कृष्ण। अतः हे चित्र केतु, आत्मा की स्थिति पर ठीक से विचार करो, ये समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, शरीर मन की आत्मा। यह विचार करो कि तुम कहां से आए हो, शरीर छोड़कर कहां जाओगे, तो उस भौतिक शोक के वश वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास। बेसिकली जो इस श्लोक के अंदर चर्चा चल रही है, वो मनुष्य जीवन में हमें सबसे पहले इसका ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। हम लोग जब आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं, तो आत्म साक्षात्कार के अंदर सबसे पहले क्या बोलते हैं, मैं कहां से आया हूं, मुझे मृत्यु के बाद कहां जाना है, भगवान कौन है, एक है या अनेक है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को कैसे निभाना है, उस संबंध को क्यों निभाना है। तो सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए, संबंध ज्ञान अर्थात भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, अभिधेय ज्ञान उस संबंध को मुझे निभाना कैसे है, और प्रयोजन ज्ञान कि उस भगवान के साथ संबंध का निभाने का प्रयोजन क्या है। वैश्वर्ट ये आत्म साक्षात्कार की बिगनिंग है, इस बिगनिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ को रियलाइज करना, अर्थात पहले हमें सबसे अपना इंटरव्यू खुद लेना। जब किसी जॉब के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले एक रिज्यूमे जाता है, आप कौन है, कहां से आए हो, कहां से पढ़ाई करी है, क्या इसके बाद अगर मान लो नौकरी छोड़ोगे तो कहां जाओगे, पहले कहां कहां जॉब किया वगैरह वगैरह, एक सेल्फ इंटरव्यू है। इसी तरह जो है अपने बारे में इंटरव्यू है, यहां तीन बातें स्पष्ट कही गई हैं कि आपको यह समझना है कि आप शरीर हो, आप मन हो या आप आत्मा। मन की बात इसमें क्यों आई, वाई मैं पर्टिकुलरली मन के बारे में कहा, बुद्धि के बारे में नहीं कहा, अहंकार के बारे में नहीं कहा, शरीर मन और आत्मा इन तीन चीजों की बात करी, तो मन की बात क्या है। वही स्पेसिफिकली रूपा जी यहां लिख रहे हैं कि समझने का प्रयत्न करो कि तुम कौन हो, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं या मैं, तो मन की बात उभरकर इसलिए आ रही है कि आपके अंदर जो भी इच्छाएं आती हैं, जो भी इस संसार में भोग भोगने की डिजायर्स हैं, उनका प्राकट्य मन के थ्रू होता है। बुद्धि दी गई है डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, हम उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि को प्रयोग नहीं करते, हम लोग इमोशंस में रह जाते हैं। और इमोशंस सेंटीमेंट्स जो कार्य है वो मन का है, वो बुद्धि का नहीं। अगर आप किसी से इमोशनली अटैच हो, पता लगे कि व्यक्ति खराब है, बुद्धि आपकी कहती है उससे अटैच नहीं होना है, तो बुद्धि डिसीजन दे रही है कि ये ठीक है या गलत है। پھر بھی آپ اسے اٹیچ رہتے ہو تو آپ ایموشنز کے تھرو ہو، ناٹ تھرو انٹیلیجنس. آپ انٹیلیجنس کے راستے سے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ نہیں رکھتے، اس کے تھرو رکھتے ہیں ایموشنز کے تھرو. اور ایموشنز کہاں سے پرکٹ ہوتے ہیں؟ ابھی آپ ایموشنل کس کے پرتی ہو؟ ایٹ پریزنٹ جو مانو سماج ہے، جو منشیہ ہے، وہ کس کے پرتی ایموشنل ہے؟ جم، بیوٹی پارلرس، کس کے پرتی ہے؟ اٹریکشن کس کے پرتی ہے؟ شریر کے پرتی. میرا ہیلتھ اچھی ہونی چاہیے، میرا شریر بڑا سڈول ہونا چاہیے، تبھی لوگ اٹریکٹ ہوں گے. استریاں بیوٹی پارلر میں بالے ہیں، مطلب فیشیل فیشیل چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ایون ناخنوں کی کٹائی کروا رہی ہے بیوٹی پارلر میں، فوٹو فائرنگ، سو مینی تھنگز آر انوالوڈ. یہ کس کے پرتی آ سکتی ہے؟ کس کے پرتی آکرشن ہے؟ آپ کے ایموشنز جو ہیں کس کے پرتی کیندرت ہیں؟ وہ ہے آپ کا شریر. اور ایموشنز کا پریزنٹیشن پراکٹ کس کے مادھیم سے ہوتا ہے؟ من کے مادھیم. ایک بڑا سمپل سا پرشن ہے کہ کرم جو ہم کرتے ہیں اس کا پھل بھوگنا ہے، تو پھل جو ہے وہ شریر بھوگتا ہے یا آتما؟ کون بھوگ رہا ہے؟ دا آنسر کمز فرام ہیئر. کون بھوگتا ہے اس کو؟ کرم کا پھل شریر بھوگتا ہے یا آتما بھوگتی؟ کون بھوگتا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں ایکسکلوسیولی کہ ہمارا جو شریر ہے وہ کرم کے پھل بھوکتا ہے، تو پھر آتما کو 84 لاکھ یونیوں میں بھرمن کرنے کی کونو آوشیکتا نہیں. بھائی چھوٹے کو شریر میں بھوگا سماپت ہو گیا، میٹر فنش تنگز آر اوور. پھر آتما ایک شریر سے دوسرا شریر، دوسرے سے تیسرا شریر، تیسرے سے چوتھا شریر، ہم کہتے ہیں کہ شریر دھارن کرتی ہے اپنے کرم کے پھلوں کے انوسار. تو کرم کا پھل کون بھوگ رہا ہے؟ آتما. من. پر آتما تو اتنی سوکشم ہے، کیسے بھوگے گی؟ کنفیوژن ہے نا. آتما کا سائز کیا ہے؟ کلپنا کیجیے، ایون ڈیفینیٹ نہیں ہے. آپ روح جی کا جو دوسرے ادھیائے کے اندر جو ہے شلوک میں پرپٹ میں لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے اپنیشد سے کوٹ کیا ہے، کلپنا کیجیے کہ آتما کا سائز کتنا ہے؟ بال کی نوک کے 10,000ویں حصے کے برابر. تو اتنی سوکشم چیز کیسے بھوگے گی؟ جب ہم کہتے ہیں کسی کو مار نہیں سکتے، اس کو کھنڈ کھنڈ نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ مر سکتی ہے، نہ کسی کو مار سکتی ہے، نہ بھگوئی جا سکتی ہے، نہ جلائی جا سکتی ہے، نہ سکھائی جا سکتی ہے. اٹ از سو اسمال، سوکشم ہے. تو وہ کرم کا پھل کیسے بھوگے گی؟ ہاؤ از دس پاسبل؟ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن آ گیا نا. پرنتو ایک یونی سے دوسری یونی سے، دوسری سے تیسری میں، تیسری سے چوتھی میں کون جا رہا ہے؟ شریر جا رہا ہے کہ آتما جا رہا ہے؟ آتما جا رہا ہے. تو کرم کا پھل کون بھوگ رہا ہے؟ آتما بھوگ رہا ہے. کیسے بھوگ رہی ہے؟ شریر پراپت کر رہے ہیں. کیسے ہیں؟ کہ ایک ویکتی نے دوسرے ویکتی کا مرڈر کرنے کے لیے سپاری دی، بھیا اس کو مار دینا، پکڑا گیا. تو کیا بولے گا جی؟ اس کے کہنے پہ میں نے یہ کار کیا، آئی ایم دا انسٹرومنٹ آف ہز ڈیزائر. اس نے اچھا پرکٹ کری کہ اس کو مارنا ہے، میں اوزار بن گیا اس کو مارنے کے لیے، میں اس کا ہتھیار بن گیا اس کو مارنے کے لیے. سملرلی آتما कर्म का फल भोगती है, उस कर्म का फल भोगने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो शरीर है, कि जिस प्रकार के कर्म किए हैं उस प्रकार का उसको इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। मैंने आपसे कहा कि देखो भाई, ये सामने जो है दीवार में पेंट पॉलिश करना है तो आपको ब्रश चाहिए, इंस्ट्रूमेंट क्या है? ब्रश। दीवार को बनाना है तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? मैसन का जो सामान होता है। इसको वुडवर्क करना है तो इंस्ट्रूमेंट क्या है? लकड़ी के कारपेंटर का सामान है। मीन्स आप कर्म करने के लिए जैसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए वैसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, उससे कार्य करते हो। तो इसी तरीके से आत्मा को अपने कर्म का फल भोगने के लिए जिस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट अर्थात जिस प्रकार का शरीर चाहिए उस प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाता है। जॉब है ब्रह्मा जी का, देखे दिस बॉडी। अब यहां प्रश्न आ रहा है कि मन और शरीर की चर्चा चल रही है, डिजायर मन में होती है कि आत्मा में होती है? मन तो जड़ है, मन क्या है? इज लाइफ। प्रकृति क्या है? लाइफ दो चीजें हैं बस, एक भगवान और एक आत्मा, दोनों अविनाशी हैं, दोनों लाइव है। शरीर क्या है? जड़। कि उसमें आत्मा है तो लाइव है, शरीर में से आत्मा निकल गई तो वो निर्जीव है। तो जो चीज निर्जीव है उसके अंदर इमोशंस कैसे आ सकते हैं? इमोशंस किसमें प्रकट होते हैं? अल्टीमेटली डिजायर कहां प्रकट होती है? डिजायर आती कहां से? डिजायर आती है आत्मा में, परंतु प्रकट होती है मन के माध्यम से। प्रकट करने के लिए मन है, इंटेलिजेंस नहीं है, मन। इंटेलिजेंस दी गई है उस डिजायर के फुलफिलमेंट करनी है या नहीं करनी है, मतलब डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, विवेक इस्तेमाल करने के लिए कि क्या ये करनीय है या अकरणीय है, क्या ये कर्तव्य है या कर्तव्य है, क्या ये सत्य है या क्या ये असत्य, क्या सच है क्या झूठ है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ये जो डिसीजन है ये बुद्धि का है, दिस इज इंटेलिजेंस। अब इसीलिए मन की बात उठ के आ रही है कि मन जो है वो आपकी बुद्धि को भी हर लेता है। क्यों? कि उससे स्ट्रांग है इंद्रियां। दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में यही कहा गया है ना, इंद्रिया नाम भी चलता जब मनोरो विद्य थे, कि जिस व्यक्ति की इंद्रिय किसी विशेष इंद्रिय के ऊपर उसका मन लग जाता, यस आई वॉन्ट दैट, आंखों के ऊपर मैंने देखा उसका रूप और मुझे वो चीज प्राप्त करनी है, मेरा मन उसका फिक्स हो गया, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए मेरी बुद्धि भी हर ली जाती है। माई इंटेलिजेंस गोज वेस्ट, नो यूज ऑफ इंटेलिजेंस, दब जाते हैं, हर गई, चोरी हो गई। किसकी वजह से? इंद्रियों की वजह से। पर इंद्रियों के ऊपर जो है उसके ऊपर मन लगा है, मन। इसलिए मन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए यहां पर चर्चा की जा रही है कि आप शरीर हो, मन हो या आत्मा हो, फाइनल क्या है? यू हैव टू कंसिडर हु यू आर, आप हो कौन? मन किसका? मेरा। बुद्धि किसकी है? मेरी। शरीर किसका है? मेरा। तो मेरा, मैं कौन हूं? इसका मतलब स्वामी तो कुछ एक्स वाई जेड एक्स्ट्रा चीज है ना, जो ना मन है ना बुद्धि है ना अहंकार है ना शरीर है। ये जो चारों चीजें हैं ये आप ये मालिक नहीं है, यू आर नॉट दिस। वो मेरा जो है बीच में, मैं जो है बीच के अंदर, मैं कौन है? यहां इसलिए कह जा रहा है कि तुम आत्मा की स्थिति को ठीक से समझो, हु यू आर। कंफ्यूज मत करो कि अपने आप को अहंकार मान लिया, अपने आप को बुद्धि मान ली, अपने आप को मन मान लिया, अपने आप को शरीर मान लिया। तुम्हारी बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त करने के पीछे कारण यही है कि तुम अभी देहात बुद्धि के लेवल पे हो। तुमने अपनी बुद्धि के द्वारा डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है कि तुम शरीर हो या आत्मा। देहाद बुद्धि क्या है? देह आत्म, देह आत्मबुद्धि का मतलब क्या है? कि आप अपनी बुद्धि के द्वारा एक फैसला नहीं कर पा रहे, आपकी बुद्धि विवेकमयी नहीं है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे हो कि आप शरीर हो या आप आत्मा। उस शरीर के अंदर ही मन आ जाता है। भगवान कहते हैं ना, मन ममय मनुष्य जीवन होते जीवन होते सरा, मन और इंद्रियां सब एक साथ आ जाती है, मन को छठी इंद्रिय कहा गया। परंतु यहां चर्चा हो रही है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयत्न करो, कोशिश तो करो। पर आज के समाज में ये कोशिश कोई नहीं कर रहा, कोशिश में कोई एफर्ट नहीं हो रहा है, एक ही कोशिश हो रही है। क्या कोशिश है? कि आप अनावश्यक आसक्ति में उलझे हो गए। आसक्ति क्या है? व्हाट इज आसक्ति? जब भगवान कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमान चलते इस पर निर्मम निरंकार से शांति में निगच्छति। शांति किसी प्राप्त होती है? इसने मिथ्या अहंकार ममता और आसक्ति का त्याग कर दिया। आसक्ति, ममता और आसक्ति, दो में भेद क्या है? ममता में और आसक्ति में भेद क्या है? दोनों चीजें त्यागने को बोली, ममता भी त्यागने को बोली और आसक्ति भी त्यागने को बोली, तो दोनों में कुछ फर्क होना चाहिए ना। दोनों में फर्क क्या है? आसक्ति किसे कहते हैं? किसी भी वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण आसक्ति कहलाता है। डीप आकर्षण, डीप, एकदम इतना डीप है कि अब आपको लगता है इसके बिना रहना मुश्किल है। एलसीडी चाहिए भी, मैं तब जिया नहीं जाता इसके बगैर। ये पुराना खटारा टीवी नहीं चाहिए, हालांकि फोटो उसमें दिखाई दे रही है, पर जो मजा एलसीडी में है या जो मजा एलईडी में है वो ये पुराने खटारा टीवी में कहां है। ये नहीं चाहिए, नया चाहिए। और इतने आसक्त हो गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए अब हर मुमकिन कर्म या कुकर्म जो भी चाहे करने के लिए तैयार। दुकान में पड़ा है, आपके घर नहीं आया है। कहां है? बाहर। इट्स नॉट योर प्रॉपर्टी, अभी आपकी प्रॉपर्टी नहीं बनी, आप उसका स्वामी नहीं बने, आपको उसके स्वामित्व का अधिकार नहीं मिला, परंतु आप उसमें आ सकते हैं। आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। उसने आपको इतना आकर्षित कर दिया है, इतना आकर्षित कर दिया है कि आपको लगता है इसके बिना जीना अब कठिन कार्य। इट इज डिफिकल्ट। आपके घर आ गया, घर आने के बाद क्या हुआ? आसक्ति तो है ही, क्योंकि आप उसमें आसक्ति इसलिए लेके आए, मेरापन और आ गया, मेरा है, कुछ छूना नहीं, इस माइंड कोई दूसरा व्यक्ति उसको छू दे, नहीं नहीं भाई मेरी चीज नहीं, किसकी है? अब ममता आ गई। अब आपसे विलग हो जाए, आपसे दूर हो जाए, कोई उसको चुरा के ले जाए, तो आपको दुकान में चोरी हो गया आपको कोई तकलीफ नहीं, आसक्ति थी, दूसरी दुकान में दिखाई दे जाएगा, तीसरी में दिखाई दे जाएगा, चौथी में दिखाई दे जाएगा। भाई एलजी का लेना है ना, 400 दुकानें हैं, प्रोडक्ट के प्रति आसक्ति थी। जब घर में आ गया और कोई उसे ले गया तो बड़ी तकलीफ हो गया, तो मेरा पीस था, बड़ी मुश्किल से मैंने खरीदा, इसको छूना नहीं भाई, तोड़ना नहीं, खराब नहीं करना, बटन अटन जरा ध्यान से लगाना, इट्स वेरी केयर, वेरी केयरफुल। अब आपकी ममता आ गई, तो अभी आपका जो है अनावश्यक आसक्ति से परित्याग करना। अभी ममता के परित्याग की बात, ममता के परित्याग तो बहुत बड़ी बात है, जो चीज आपके पास है उसको छोड़ देना, जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आपके स्वामित्व में है, उसका त्याग करना तो तप है। उसका त्याग करना क्या है? तपस्या है। दैट इज नॉट ए इजी जॉब, वो आसान कार्य नहीं है। اگر آپ جو ہے جو چیز دکان میں پڑی ہے جس کے پرتی آپ آسکت تھے آپ نے اس آسکتی کو چھوڑ دیا, اس کو چھوڑ دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک اناوشیک وستو کا پریتیاگ کر دیا جس کی زندگی میں آپ کو ضرورت نہیں تھی. پرنتو جو چیز آپ کے پاس ہے آپ کی اس سے ممتا ہے, اگر وہ چیز آپ ہم ٹی وی کی بات نہیں کر رہا اینی تھنگ جس کو آپ کسی یگ میں استعمال کر دیتے ہیں تو وستو رہتی ہے. ٹھیک ہے چیز تھی میری سیوا میں یگ میں استعمال ہو گئی ٹھیک ہے دان, پرنتو آپ نے کسی دوسرے کو دے دیا ہے تو دان کہلاتی ہے. اور جب آپ نے سنیم کر لیا کنٹرول کر لیا آپ نے کہ نہیں نہیں آئی ڈونٹ نیڈ اٹ تو تپسیا دان دینا بھی ایک تپسیا ہے. کس چیز کا دان؟ جو آپ کو بہت پری ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اچھا یہ چیز استعمال نہیں ہو رہی ہے نا مندر کو دے دو, میرچ استعمال نہیں ہو رہا ہے نا مندر بھیج دو وہ استعمال کر, کباڑی کو نہیں دے دیں, یہ کرسی نہیں چل رہی گھر کے اندر چلو مندر والے ریپیئر کرا کے یوز کر لیں گے, مندر کو دے دو. جو آپ کو پری ہے اس کو دو نا تو تپسیا کہلائے گی. اتنا سنیم سے میں نے کنٹرول کیا اپنے آپ کو, کتنی میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کیا کہ اسے چھٹکارا پا جاؤں. ممتا تیاگ دی میں نے, ممتا چھوڑ دی اس کے پرتی, آسکتی چھوڑ دی اس کے پرتی, ممتا چھوڑ دی. اگر وہ چیز جو آپ کو بہت پریہ تھی آپ نے تپسیا کرتے ہوئے بھگوان کو ارپن کر دی ہے تو بھگوان سے یوگ ہو گیا, اٹ از یوگ. پرنتو یہاں جو ہے کہا جا رہا ہے اسپشٹ کہ آپ کو یہ جاننا ہے کہ آپ شریر ہو آپ من ہو یا آتما ہو, تینوں میں سے کیا ہو. اور اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب اس کا ریزلٹ کیا آئے گا, جب آپ جان جاؤ گے کہ میں شریر نہیں ہوں میں آتما ہوں تو دین یو ول لائک ٹو نو کہ میرا آتما کا اوریجن کہاں سے ہے, شریر کا اوریجن کہاں سے ہے, آتما کا اوریجن کہاں سے ہے. آپ کو پتا لگا کہ آتما کا اوریجن جو ہے بھگوان سے ہے. بھگوان نے کہا ہمارے منشا جیو لوکے جیو بھوت سنا منشا شان بریاری پرتستانی کا شریر, آپ کا سمبندھ بھگوان سے ہے. اچھا تو اس سمبندھ کو نبھایا کیسے جائے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. میرے کو تو میری ماتا نے بتایا کہ بیٹا یہ تیرے چاچا ہیں جن سے 40 سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے, ہم بھی ان کے بارے میں نہیں جانتے تھے پرنتو آج پتا لگا ہے کہ یہ تمہارے پتا کے بھائی ہیں. ماتا جی یہ بتاؤ کہ ان سے سمبندھ کیسے نبھانا ہے, رشتے داری میں کیا لین دین, کیا آنا جانا, کیا ملنا جلنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, ان بھولے ہوئے سمبندھ کو اب نبھانا کیسے. سیم تھنگ اپلائیز ہیئر کہ بھگوان کے ساتھ اپنا سمبندھ ہم بھولے ہوئے تھے, ہمیں اب یاد آیا ہے کہ یس بھگوان کے ساتھ ہمارا کوئی سمبندھ ہے, تو پرشن پہلا کیا اٹھتا ہے اس سمبندھ کو نبھانا کیسے. تو نبھانے کا طریقہ بتایا کہ آپ کو اناوشیک آسکتی کو کس کے پرتی, اس بھوتک سنسار کی وستوؤں کے پرتی, اندری بھوگوں کے پرتی, اپنے اس بھوتک آنند کے پرتی جو آکرشن ہے اس کو تیاگنا ہوگا, اس کی آسکتی کو تیاگنا ہوگا. دس از دا فرسٹ پروسیس کہ مجھے بھگوان کے ساتھ سمبندھ کو نبھانا کیسے. سیکنڈ چیز کیا بتائی اس کے اندر کہ جس کا کرشن کی سیوا سے سمبندھ نہیں ہے اس کو تیاگ دینا ہے, ارتھات آپ کو یکت ویراگیہ کی استھتی کو کیپچر کرنا. ویراگیہ کیا ہے؟ ویراگیہ کا مطلب گھر بار چھوڑ کے سنسار کو چھوڑ کے کسی گفا میں جا کے بیٹھ کے بھجن کرنا نہیں. ایکچوئل ویراگیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کاریہ جو بھی وستویں جو بھی پدارتھ بھگوان کرشن کی سیوا سے سمبندھت نہیں ہے ان کا پریتیاگ کر دینا, ان کو چھوڑ دینا. چائے چھوڑ دی ویراگ ہو گیا, کافی چھوڑ دی ویراگی ہو گئے, ماس انڈا مرغا مچھلی پیاز لہسن چھوڑ دیا ویراگی ہو گئے. اب آپ نے جو سیوا کرنی ہے بھگوان کے پرتی, کیونکہ ویراگی آپ کس کے لیے دے رہے ہیں, بھگوان کے پرتی آپ کا آکرشن ہو گیا ہے, بھگوان کی سیوا کے پرتی آکرشن ہو گیا ہے, اس لیے آپ نے ساری وستویں چھوڑی. اور ان کو چھوڑنا تپسیا کا ایک روپ ہے, تپ ہے, اپنے آپ کو پکانا ہے, مشکل ہے کام. چاہ نہیں چھوڑتی تھی، بڑا مشکل بڑا دکھا کام ہے، شراب چھوڑ دی، ماس انڈا مرغا مچھلی چھوڑ دیا، پھر وہ جی سگریٹ چھوڑ دی، پھر چائے نہیں چھوڑتی، گھر میں تو آئے تو چائے پلاؤ، کسی کے یہاں جاؤ تو چائے پیو، چائے چھوڑنی بڑی مشکل ہے، تو چائے چھوڑ دی تو آپ تپسیا میں اور آگے بڑھ گئے، تپ ہے، سنیم کر رہے ہیں، تپ کا مطلب کیا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ابھی تک ہم ڈی کنٹرول تھے، ایوری تھنگ واز اوپن، اب آپ اپنے آپ کو شاستر کے انوسار، کرشن بھاونا امرت کے نیموں کے انوسار، بھگوان کرشن کی سیوا کے نیموں کے انوسار اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا پریاس کر رہے ہیں، قابو میں کرنے کا پریاس کر رہے ہیں، تپسیا کر رہے ہیں، اسی لیے بھوتک جگت کے اندر کوئی بھی وستو جو کرشن کی سیوا سے سمبندت نہیں ہے اس کا جب تیاگ کر دیتے ہیں اور جو وستویں بھگوان کرشن کی سیوا سے سمبندت ہیں ان کو سویکار کر لیتے ہیں تو یکت ویراگیہ کہلاتا ہے، کہ ویراگیہ لے رہے ہیں یکت ہونے کے لیے، کس سے یکت ہونا ہے، بھگوان سے، بھگوان سے جڑنے کے لیے، بھگوان سے یکت ہونے کے لیے، بھگوان سے یوگ کرنے کے لیے آپ تپسیا کر رہے ہیں، تپسیا آپ اپنے کسی سیلف انٹرسٹ سیلف بینیفٹ کے لیے نہیں کہ میرے کو سدھی پراپت ہو جائے، چمتکار کر سکوں، ہاتھ کروں تو سونے کی مالا آ جائے ہاتھ کے اندر، ناٹ فار دیٹ، آپ کس لیے سنیم کر رہے ہو، کس لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہو، کیا کارن ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھگوان کرشن کا ایک بہت ہی اچھا سیوک بنانا چاہتے ہیں، آئی وانٹ ٹو بی دی بیسٹ سروینٹ، اور بیسٹ سروینٹ بننے کے لیے کیا رولس ہیں، ریگولیشنس ہیں، آئی مسٹ فالو دیم، مجھے ان کو فالو کرنا ہے، کیونکہ میں اپنی آسکتی سے باہر نکل کر بھگوان کے پرتی آسکت ہونا چاہتا ہوں، تو اناوشک آسکتی، اناوشک آسکتی دو پرکار کی ہے، سمجھیے گا، ایک ہے والنٹری، ڈاکٹر سمجھیں گے اچھے طریقے سے، ایک ہے ان والنٹری، والنٹری ہے کہ اب جان بوجھ کے آسکتی سویکار کی ہے، ان والنٹری ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا پھر بھی جب آپ کے سامنے آتی ہے آٹومیٹیکلی چلی آتی ہے تو آپ اس کو ایکسپٹ کرے جاتے ہو، اس کو ریفیوٹ نہیں کرتے، ایک ہے کہ آپ نے پلان کیا، سنا مجھے وہ چیز چاہیے چاہیے، دوسرے سامنے آئی تو آپ نے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے اوکے فائن ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو آسکتی کا تیاگ کرنا ہے، کیسی آسکتی کا تیاگ کرنا، جب ہم کہتے ہیں کہ بھگوان کے پرتی پریم پراپت کرنا ہے تو آپ کو جو ہے بھگوان کے پرتی آسکتی ہونی چاہیے، کیسی آسکتی ہونی چاہیے، کہ ایک استری جو ویشیا جاتی کی ہے وہ اپنے پریمی سے ملنے کے لیے چلی جا رہی ہے، اس کو دھیان نہیں کسی کا، صرف پریمی کا دھیان ہے، ٹوٹلی امبائبڈ ان ہر، اس کے من کے اندر صرف تو ملنے کی استھتی، پریمی کو پراپت کرنے کی استھتی اس کے من کے اندر اتنی بھاری ہے اسے اپنے آس پاس بائیں دائیں اوپر نیچے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور دیکھتی ہے کہ ایک ویکتی بھجن کر رہا ہے، اس کے آگے سے نکل جاتی ہے دو تین چار بار، تو بھجن کرنے والا ویکتی اسے روکتا ہے، مجھے کہتا ہے کہ تیرے کو لجا نہیں آتی، تو چھم چھم کرتی پائل بجاتی ہوئی میرے سامنے سے تین چار بار نکل گئی، بائیں دائیں گھوم رہی ہے، میں بھجن کر رہا ہوں مجھے ڈسٹربنس ہو رہی ہے، آئی ایم بینگ ڈسٹرب، استری کیا کہتے ہیں، کس کا بھجن کر رہا ہوں، میں بھگوان کا بھجن کر رہا ہوں اور اس کا بھجن کر رہا ہوں، کہتی میں تو ایک پریمی کا بھجن کر رہی تھی، اس کی آسکت تھی تو مجھے تم دکھائی نہیں دیے، تم بھگوان کا بھجن کر رہے ہو، بھگوان میں آسکت ہو تمہیں میں کیسے دکھائی دے گئی، کیا بھجن کر رہے ہو، تمہارے بھجن کا لیول کیا ہے، کہ مجھے تم نہیں دکھائی دیے، میں تو ایک آدمی میں ایک پرش میں آسکت تھی اور تم بھگوان میں آسکت ہو تمہیں میں کیسے دکھائی دے گئی، تو آسکتی کیسی ہے کہ یہاں ویکتی جو ہے بھگوان کا بھجن کرتے ہوئے یاد نہیں کر رہا کہ مجھے استری دکھائی دے، استری ڈسٹرب ہو رہا، کیوں اناوشک ہے، انوالنٹری ہے، اس کے نکلتے ہی انوالنٹرلی ڈسٹرب ہو گئے، بنا چاہے پل کے جھپک جاتی ہیں، انوالنٹرلی ڈسٹرب ہو گئے، ایک والنٹری ہے کہ بھجن تو کر رہا ہے پر استری کا دھیان کر رہا ہے، بھجن کر رہا ہے استری کا دھیان کر رہا ہے، بھجن کر رہا ہے استری کا دھیان کر رہا ہے، بھجن کر رہا ہے سنسار کا دھیان کر رہا ہے، دھیان بھجن میں نہیں، دھیان سنسار میں، یہاں پر سنسار سامنے آتے ہی بھجن کرتے کرتے بھی اس کی متی آٹومیٹکلی اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئی، بنا چاہے ही डिडंट वॉन्ट इट, पर फिर भी हो गई। तो स्त्री ने बहुत अच्छा लेसन दिया कि तुम काहे भजन कर रहे हो भैया, तुम्हें मैं दिखाई दे दी, मैं तो एक आदमी का भजन कर रही थी, मुझे तुम दिखाई दे दी। तो आसक्ति, अनावश्यक आसक्ति को छोड़ना है। यहां स्पष्ट कहा जा रहा है कि तुम्हें शांति प्राप्त हो सकेगी। और शांति क्या है? व्हाट इज दैट अल्टीमेट शांति? अल्टीमेट शांति क्या है? अल्टीमेट शांति जो है वो है कि नाउ यू आर गोइंग बैक टू हिज अबोट, हो जा रहे आप जो है। जब भगवद गीता पढ़ेंगे दूसरा अध्याय, तो दूसरे अध्याय के अंदर जब विहाय कामाने सर्वान के बाद क्या श्लोक आता है, शांति की चर्चा होती है। दूसरे अध्याय के जो आखिरी श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्था नयन प्राप्य विभूयते, कि इस आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो जाता है तो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ऊपर में ही भगवत धाम की चर्चा, ब्रह्म निर्वाण की चर्चा हुई है। किसी शांति प्राप्त करता है तो ब्रह्म निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, ब्रह्म के पद की प्राप्ति होती है। वो ब्रह्म का पद जिसमें कि आठ लक्षण, आठ गुण, वो शांति प्राप्त होगी। और उस शांति को प्राप्त करने का जो पहला स्टेप है, जो बिगनिंग है, जो रूट है जहां से उस शांति की प्राप्ति करनी है, वो है डिफ्रेंसिएशन कि शरीर है, मन है कि आत्मा है। सबसे पहले इस बात को समझ, फिर एक एक करके अगले प्रश्न आते जाते हैं। गुरु कौन है? गुरु से मेरा क्या संबंध होना चाहिए? दीक्षा क्यों लेनी चाहिए? शिष्य क्यों बनना चाहिए? भगवान कौन है? भगवान से मेरा क्या संबंध है? मेरा तो डायरेक्ट है जी, गुरु को मैं नहीं मानता, मैं तो भगवान से डायरेक्ट बातें करता हूं। ओके, नो मीडिएटर। ऐसे लोग मिलते हैं जब हम प्रचार करते हैं, तो ऐसे लोग मिलते हैं। मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं लगती है, तो जरा भगवान से डायरेक्ट संबंध है, मैं तो डायरेक्ट भगवान से बात करता हूं। बस मैं जो कहता हूं पूरा कर देते हैं, मैं जो कहता हूं मतलब कामना रखता हूं वो पूरी हो जाती है। अरे कामना रखेगा तो फिर तो दुनिया नहीं भोगेगा क्या? फिर आज सकाम कर्म कर रहा है तो आगे बंधन में नहीं बंधेगा? ये बात समझ में नहीं आती। पर जब हम आत्म साक्षात्कार की बात करते हैं तो इट इज अ वेरी वाइड टॉपिक। इसी की चर्चा जो है इस श्लोक में हो रही है। प्रभुपाद जी बड़े सुंदर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, आत्म साक्षात्कार के बारे में प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर लाइन इसके अंदर लिखी है। जब ये सीधी सी बात समझ जाता है, मतलब आत्म साक्षात्कार का ज्ञान होना कोई टेढ़ी बात नहीं है। सीधी एक लाइन है, टक टक टक, वो मुझे प्राप्त हो गया। मैं कौन हूं? मुझे कहां जाना है? मैं कहां से आया हूं? भगवान कौन है? भगवान से मेरा संबंध क्या है? संबंध कैसे निभाना है? संबंध क्यों निभाना है? मृत्यु के बाद कहां जाना है? शोक करना है नहीं करना है? लिमिटेशन होनी नहीं होनी है? अर्थात क्या क्या कर्म करना है कि भगवान के धाम को जा सकूं? वगैरह वगैरह वगैरह। सिंपल सी सीधी लाइन है बिल्कुल, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब ये सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर होने लगता है। क्यों? संबंध समझ में आया, संबंध कैसे निभाना है ये समझ में आया, संबंध निभाने का प्रयोजन क्या है ये बात समझ में आ गई। क्योंकि तीनों बातें समझ में आ गई तो फिर सोचता है ऐसा है कि अब किससे मिलूं कि मेरा प्रयोजन मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, किससे मिलूं कि भजन कैसे करना है ये बात समझ में आ जाए। आई मस्ट मीट समबडी। जब वो मीट समबडी की बात करता है, किसे मिलने की बात करता है, तो तुरंत खिंचा हुआ चला आता है कृष्ण भावनामृत आंदोलन की तरफ, कि ये मेरे को बता सकते हैं कि मुझे भगवान के धाम जाने के लिए क्या 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 प्रयास करने हैं और 84 लाख योनियों से बचने के लिए मुझे क्या प्रयास करने हैं। परंतु जो व्यक्ति सांसारिक भोगों के प्रति आसक्त है उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं पथ भ्रष्ट। नेचुरल प्रोपेंसिटी, जो नेचुरल पथ है वो क्या है? मैं भगवान का अंश हूं तो मुझे उन्हीं की गोदी में आराम मिलने वाला है, क्योंकि मेरे पिता वो हैं। और उनकी गोदी कैसे प्राप्त करूं, जो सड़क उस रास्ते पे जा रही है वो मेरा पथ है, परंतु मैं भौतिक संसार की गोदी में बैठने वाला हूं तो भौतिक संसार में जाने का मतलब है अपने पथ से भ्रष्ट हो जाना, अपने पथ से दूर हो जाना। इसलिए कह रहे हैं कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है, उसे चाहिए कि भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा तथा आसक्ति को छोड़ दे। यहां इंटेलिजेंस यूज करना है, इज इट नेसेसरी फॉर मी, इज इट रिक्वायर्ड, क्या ये चाहिए मेरे, क्या मेरे लिए असेंशियल है, है तो क्यों है, व्हाई इट इज सो। जब ये बात सोच लेगा तो उसकी आसक्ति हौले हौले समाप्त हो जाएगी, तभी वह गंभीर और शांत बना रह सकता, तभी उसे शांति प्राप्त होगी। अर्थात अब जो है वो भगवान के धाम जाने में एक पहला स्टेप, एक पहली सीढ़ी चढ़ गया है। और सीढ़ी का पहला स्टेप क्या है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, टू नो योर सेल्फ, हु आई एम, मैं कौन हूं। इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब वो आगे बढ़ सकता है, वरना उसके आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, भगवान के धाम जाने का कोई चांस नहीं। हरे कृष्ण, श्री भगवान की। लास्ट चीज दोबारा बताइए, कुछ कर्म किसी जन्म, इसी जन्म में। देखिए ऐसा है, आपकी बात का उत्तर देता हूं, कर्म क्या है, कर्म इज एक्शन, ठीक है, एक्शन का आपको एक रिजल्ट मिलना, कोई भी कर्म करेंगे उसका फल जनरेट होना, फल मिलना। आपको प्यास लगी है, आपने पानी पीने का कर्म किया तो उसका आपको रिजल्ट जो है अभी मिलेगा कि अगले जन्म में मिलेगा, इंस्टेंट, जैसे होता है ना इंस्टेंट एनर्जी, थका व्यक्ति आया अंदर आया घर में, ग्लूकोज का पानी पिया, शायद ग्लूकोज दिया अंदर, शक्ति आ गई, यू गेट इंस्टेंट एनर्जी। इसी तरीके से जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करने में कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका हमें रिजल्ट इंस्टेंट मिलता है। भूख लगी है, खाना खाया, पेट भर गया, तृप्ति हो गई, फल मिला नहीं मिला, इंस्टेंट रिजल्ट है। इसी तरह कुछ ऐसे कर्म हैं जिनका फल आपको इसी जीवन के अंदर मिलता है पर डिलेट मिलता है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। आप आज कार्य कर रहे हैं, एक महीने के बाद सैलरी के रूप में आपको उसका फल मिल रहा है, दो महीने के बाद सैलरी के रूप में फल मिल रहा है, मतलब कर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट जो है आपको इंस्टेंट भी मिल सकता है, इसी जन्म में भी मिल सकता है, परंतु उसका रिजल्ट भोगने के लिए अगर सिचुएशंस जो हैं वो फेवरेबल नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, तो आपको कई जन्मों के बाद मिलेगा। ये बात धृतराष्ट्र ने समझी जब व्यासदेव जी से उसने प्रश्न किया कि आप मुझे ये बताइए कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए हैं, मैंने कौन से कर्म किए थे कि मेरे 100 पुत्रों का वध हो गया। तो उत्तर मिला कि तुमने आज से 50 जन्म पूर्व एक पक्षी के 100 बच्चों का वध किया था और तुम राजा की संतान थे, तुमको कोई टोक नहीं सकता था, तुमको कोई रोक नहीं सकता था, और तुमने खेल खेल में एक पक्षी के 100 बच्चों का वध किया। तो धृतराष्ट्र ने यह पूछा कि मुझे बताइए कि अगर मैं राजा का पुत्र था, मैंने 100 बच्चों का वध किया है, तो उसे एज पनिशमेंट मुझे तभी क्यों नहीं दे दी, लॉ था ना, जब वध किया है तो क्या पक्षी और क्या इंसान मेरे को तभी जो है इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल गया, उसी जन्म में क्यों नहीं मिल गया। आप कह रहे हो कि 50 जन्म के बाद तुझे ये फल मिला है, तो बीच में किसी जन्म में क्यों नहीं मिल गया, वाई 50 बर्थ्स, 50 जन्म मुझे क्यों लगे, तो व्यास देव जी ने उत्तर दिया कि पुत्र की प्राप्ति बड़े पुण्य कर्मों से होती है और तुमने 50 जन्म लगाए पुण्य कर्मों को संचित करने के लिए। जब वो तुम्हारे जो है कर्म उनके फल जो है संचित हो गए, जमा हो गए कि यस नाउ एज ए रिजल्ट ऑफ दिस यू कैन गेट 100 किड्स, 100 पर 100 बच्चे पैदा होंगे, तुम्हारे 100 पुत्र पैदा होंगे, तब 100 पुत्र पैदा होंगे। तो इट इज ए डिलेड रिएक्शन, डिलेड कर्म का फल मिलना। तो डिलेड कर्म है, इंस्टेंट कर्म है, स्लाइटली डिलेड कर्म है जो इसी जन्म में फल मिल जाते हैं, एंड देन कलेक्टिव कर्म। आपने कहा कि सारे लोग सुनामी में जाके मर गए इंडोनेशिया में, भूचाल आया सारे मर गए, ट्रेन पलटी सारे एक जगह मर गए, जहाज उड़ गया सारे एक जगह मर गए, सबका क्या दोष था? इट इज ए कलेक्टिव कर्म। जैसे कि महाभारत के युद्ध के अंदर जगह जगह से योद्धा आए थे, जगह जगह से अलग अलग देशों से योद्धा आए थे, उन्होंने आके जो है पार्टिसिपेट किया, असम मृत्यु को प्राप्त हुए, कलेक्टिव कर्म था ये। इसी तरह जो है अलग अलग लोग अलग अलग समय पे अलग अलग जगह के एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं भाग्यवश, और उनको मृत्यु मिल जाती है या उनको चोटें मिलती हैं, तकलीफ होती है, डैमेजेस होते हैं, ये उनके कलेक्टिव कर्मों का फल है। उनके सारे कर्म जो है एक जगह कलेक्शन हुआ और फिर उसका फल प्राप्त हो गया, सबको इकट्ठा भोगना था। तो ये जो बातें हैं थोड़ी कर्मों के फल जो है, हम देखते हैं एक परिवार के अंदर जो है एक स्त्री दूसरे घर से इस घर में बहू बन के आती है, उसका इस धर्म के साथ कलेक्टिव कर्म है, उसको जुड़ा हुआ है, उसको इस घर में आना, कहते हैं ना संजोग हो रहा है, संजोग हो रहा है। संजोग क्या है? व्हाट इज दैट संजोग? संजोग का मतलब है कि उसके जो कर्म फल हैं उनके अनुरूप उसका जुड़ाव इस फैमिली में जो व्यक्ति रहते हैं उनके कर्म फलों के साथ है, इसलिए वो इस घर में आ गई, दूसरे घर में नहीं गई। क्या उसके लिए और मतलब इक्विलेंट क्वालिफिकेशन के, इक्विलेंट जॉब के, इक्विलेंट ब्यूटी के और व्यक्ति नहीं थे संसार में? यही क्यों थे? इसी तरह जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, एक ही समय में दो व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, एक रईस के घर में होता है, एक गरीब के घर में होता है, क्योंकि उसके कर्म के फल उस घर के साथ, उस परिवार के कर्म फलों के साथ जुड़े हुए हैं। उसको फल जो भोगना है कलेक्टिव कर्म है, उस कलेक्टिव कर्म के अंदर उसी परिवार के साथ भोगना है, उसी जगह भोगना है। एक व्यक्ति जो है वो सोने का चम्मच लेके पैदा होता है, टाइम सेम है, सिटी सेम है, देश सेम है, सेम सिटी में सेम, कहते हैं ना हॉरोस्कोप बनता है तो क्या चीजें चाहिए? डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, एंड प्लेस, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, तीन चीजें चाहिए ना। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है, टाइम ऑफ बर्थ सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, पर एक आदमी सोने के चम्मच को लेकर पैदा हो रहा है, एक आदमी भिखारी के यहां पैदा हो रहा है, क्योंकि उसके कर्म के जो फल हैं उस परिवार के जहां पैदा हो रहा है उनके साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ उनका अटैच, उसका जो है पिछला लेखा जोखा उन लोगों के साथ है, इसलिए उसको उस परिवार में जाना है। ये हमारा डिसीजन नहीं है, ऊपर से डिसीजन आ रहा है कि तुम्हें अपने कर्म के फलों के अनुसार ये फल भोगने हैं, यहां जाके भोगने हैं, इस समय भोगने हैं, ऐसे भोगने हैं। एंड वी डू इट। बिजनेस करता है, अप्स एंड डाउन आते हैं, जेल भी जाता है, जेल से आके फिर राजा बन के बैठ जाता है, वो है ना अभी करंट सिचुएशन चल रही कंट्री के, वो उसके कर्म के फल हैं, उसको भोगने हैं, उनके साथ भोगने हैं, कैसे भोगने हैं, दिस इज अ वेरी डिटेल्ड थ्योरी, इसको आसानी से समझा नहीं जा सकता। हरे कृष्ण।